आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संबल योजना के तहत आज मुख्यमंत्री श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि करेंगे वितरित। आज पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम होगा घोषित। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन का होगा विकास। और रमजान माह के आज अलविदा जुमा पर भोपाल में विशेष तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के श्रमिकों को संबल प्रदान करने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत आज 23,162 श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करेंगे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। योजना में अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए संपूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इंदौर जिले में संबल योजना के 706 प्रकरणों में श्रमिक परिवारों को 15,18,00,000 रुपए मिलेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण नगर निगम और जन पंचायत इंदौर में किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में आयोजित कक्षा पांचवी और आठवीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं का परिणाम आज दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि परीक्षा परिणाम राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in या result.aspx पर देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर शिक्षक संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। इन परीक्षाओं का संचालन 24 फरवरी से 5 मार्च तक किया गया था। इनमें प्रदेश के कक्षा पांचवी के 11,17,000 से अधिक, कक्षा आठवीं के 11,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। संसद ने केंद्रीय बजट 2025-26 का अनुमोदन कर दिया है। राज्यसभा ने कल वित्त विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। इसके साथ ही 2025-26 के लिए बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई है। सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त विधेयक 2025 का उद्देश्य कर निश्चितता लाना, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना और भारतीय करदाताओं को सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि नए आयकर स्लैब सरलीकरण लाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त विधेयक का एक और प्रमुख आकर्षण स्रोत पर कर कटौती टीडीएस दरों को युक्तिसंगत बनाना है। शिवपुरी जिले में रबी सीजन में इस बार गेहूं के अधिक उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। जिले में किसानों द्वारा अपने खेतों में गेहूं की कटाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। इस बार जिले में 1,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में खेती की कटाई का जब काम पूरा हो जाएगा। शिवपुरी जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों उपार्जन के लिए 31 मार्च पंजीयन की तिथि निर्धारित है। पंजीयन का काम इस समय तेजी से चल रहा है। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एमके भार्गव ने बताया कि इस बार जिले में 1,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोनी हुई है।
उत्पादन भी बहुत अच्छा, करीब 50 से लेकर 55-60 क्विंटल प्रति हेक्टर तक उत्पादन मिलने की संभावना है। इस समय किसान भाइयों जो शासकीय मूल्य है, समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं, उस पर शासन की खरीद के लिए पंजीयन कराएं। पंजीयन के लिए अभी 31 मार्च की तारीख भी है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँ कि आप गेहूँ के जो विक्रय केंद्र है, जहाँ पर आप शासन के द्वारा क्रय किया जाता है, वहाँ विक्रय के लिए ले जाएँ। और गेहूँ में अभी कटाई का समय बिल्कुल भरपूर उत्पादन का आ चुका है, आप शीघ्र कटाई से पूर्व पंजीयन जरूर करा लें। सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार राज्य की प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़ने की पहल कर रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ाना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर और आगरा को मध्य प्रदेश के मैहर, भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जोड़ेगा। इसके अलावा चित्रकूट को अयोध्या से जोड़ने के लिए पहले ही रामपद गमन गलियारे का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 3 से 3.5% है। राज्य सरकार का लक्ष्य से 2028 तक 4 से 5% और 2047 तक 8 से 10% तक बढ़ाना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
विधानसभा भवन के मानसरोवर सभागृह में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2025 का कल समापन हुआ। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने विकसित राष्ट्रीय भारत युवा संसद 2025 के लिए चयनित ओजस्वी वक्ता विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री परमार ने चयनित तीनों वक्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर ओजस्वी वक्तव्य देने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा।
श्रेष्ठतम स्थान दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने का सकते 2047 का भारत है, इसको हमने विकसित भारत का है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित करके तब तक भारत कैसा होना चाहिए और उसमें देश के युवाओं की और समाज की भूमिका क्या, हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा में दिया है उस पर गर्व करते हुए।
पवित्र माह रमजान का आज अलविदा जुमा है, जिसे लेकर भोपाल शहर में विशेष तैयारियां की गई हैं। शहर की मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। इससे पहले धर्मगुरु मौजूद लोगों को अपनी तकरीरों के माध्यम से भलाई के रास्ते पर चलने की सीख देंगे। शहर की ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 30 मार्च को चैत्र प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर उज्जैन में विक्रमोत्सव के अंतर्गत आयोजित विशेष कार्यक्रम संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में होंगे। डॉ. यादव ने बताया कि विक्रमोत्सव के विशेष कार्यक्रम सहित इसी दिन उज्जैन में आयोजित अन्य सभी कार्यक्रमों में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और अन्य आमंत्रित अतिथिगण भी उपस्थित रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। कल रात हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। राजभवन में कर्मयोगी बने विषय पर आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कार्यशाला में शामिल होंगे। कार्यशाला में मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और कुल सचिव और स्वशासी कॉलेज के प्राचार्य सहित विभिन्न संकायों के प्राध्यापक भी शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए नवाचार के तहत उचित मूल्य दुकानों का उन्नयन 30 जन पोषण केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बाणगंगा पर केंद्र का कल औपचारिक विधिवत शुभारंभ किया गया। नर्मदापुरम में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत लगभग 500 किसानों का 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम में हुआ। जबलपुर में दृष्टिबाधित छात्रों को कंप्यूटर में दक्ष बनाने की अभिनव पहल हुई है। यहां दिव्यांग बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देकर उन्हें दक्ष बनाया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। कटनी में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत कल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कटनी में जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार मेला संपन्न हुआ। मेले में 121 युवाओं का कंपनियों के माध्यम से रोजगार के लिए प्राथमिक चयन कर लिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।